नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के मालदा से हावड़ा और कामाख्या के बीच देश की पहली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने के लिए जल्द लाई जाएगी नई नीति। उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल की घोषणा, स्टार्टअप के लिए अब उद्यमियों को सीड फंड के रूप में 10 लाख रुपए की जगह 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। और राज्य में एग्री स्टैक महाअभियान के तहत किसानों के पंजीकरण का दूसरा चरण आज से, अब तक 20 लाख से अधिक किसानों का हो चुका है निबंधन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के मालदा से हावड़ा और असम के कामाख्या के बीच देश की पहली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री गुवाहाटी हावड़ा वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को भी वर्चुअल माध्यम से रवाना करेंगे। साथ ही श्री मोदी कई नई अमृत भारत ट्रेनों को भी रवाना करेंगे।
वंदे भारत चेयर कार की सफलता के बाद अब वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस की शुरुआत होने से भारत में लंबी दूरी की ट्रेन यात्रा अब और तेज, सुरक्षित और आरामदायक हो जाएगी। हावड़ा गुवाहाटी मार्ग देश के सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्गों में से एक है, जिस पर रोजाना लाखों यात्री सफर करते हैं। इस ट्रेन के शुरू होने से कालीघाट मंदिर और कामाख्या देवी मंदिर जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा अब और आसान, सुरक्षित और सुविधाजनक हो जाएगी। हावड़ा गुवाहाटी के बीच चलने वाली यह नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मौजूदा समय में इस रूट पर चलने वाली सबसे तेज ट्रेन सरायघाट एक्सप्रेस की तुलना में काफी कम समय लेगी। यात्रा समय कम होने से क्षेत्रीय व्यापार, पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही अलग अलग क्षेत्रों के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक रिश्ते और मजबूत होंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
नई अमृत भारत ट्रेनों में 5 ट्रेन बिहार से होकर चलेंगी। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि इन ट्रेनों में हावड़ा से आनंद विहार, सियालदह से बनारस, अलीपुर द्वार से मुंबई के पनवेल, डिब्रूगढ़ से लखनऊ के गोमती नगर और गुवाहाटी के कामाख्या से रोहतक ट्रेन शामिल हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने के लिए जल्द ही नई नीति लाई जाएगी। बेतिया में समृद्धि यात्रा के दौरान जनसंवाद को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने कहा कि 7 निश्चय के तहत सुलभ स्वास्थ्य, सुरक्षित जीवन के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए जिला और प्रखंड स्तरीय अस्पतालों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।
सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाई जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दोगुना रोजगार, दोगुनी आय के साथ प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना किया जाएगा। साथ ही अगले 5 वर्षों में युवाओं के लिए 1 करोड़ नौकरी और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। श्री कुमार ने कहा कि राज्य में नई एजुकेशन सिटी का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज समृद्धि यात्रा के क्रम में पूर्वी चंपारण जिले का दौरा करेंगे। इस दौरान वे 172 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री कुमार 138 करोड़ रुपए लागत वाली 30 योजनाओं का उद्घाटन जबकि 34 करोड़ रुपए लागत की 40 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री जिले में चल रही विभिन्न विकास और कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे, साथ ही वे जनसंवाद भी करेंगे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। राज्य में एग्री स्टैक महाअभियान के तहत किसानों के पंजीकरण का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। अभियान के तहत अब तक 20 लाख से अधिक किसानों का निबंधन हो चुका है। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व और भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि अभियान के तहत 75 लाख किसानों के निबंधन का लक्ष्य है, जिसे अगले 25 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि भागलपुर, पूर्णिया, वैशाली और अररिया समेत कई जिलों ने निबंधन में उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए राज्य औसत से बेहतर प्रगति दर्ज की है। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने 19 जनवरी से शुरू हो रहे जन सुनवाई कार्यक्रम को तत्परता से लागू करने का निर्देश दिया है। उप मुख्यमंत्री सब विभागीय मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि हरेक सोमवार और शुक्रवार को विभाग के संबंधित अधिकारी जन सुनवाई के लिए अपने कार्यालय में उपस्थित रहेंगे और नागरिकों की समस्याओं की तत्काल सुनवाई करेंगे। केंद्र सरकार ने वर्ष 2024-25 के दौरान कृषि संबंधी आवश्यकताओं को समय पर पूरा करने के लिए रिकॉर्ड स्तर पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने बताया कि उर्वरकों की अनुमानित राष्ट्रीय आवश्यकता लगभग 152.5 करोड़ बोरियों के मुकाबले सरकार ने लगभग 176.79 करोड़ बोरियों की उपलब्धता सुनिश्चित की है। मंत्रालय ने कहा कि यह अतिरिक्त उपलब्धता किसानों को सहयोग देने और देश भर में निर्बाध कृषि गतिविधियों को बनाए रखने में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। प्रदेश में स्टार्टअप के लिए अब उद्यमियों को सीड फंड के रूप में 10 लाख रुपए की जगह 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के अवसर पर पटना में आयोजित अविन्या बिहार 2.0 कार्यक्रम में उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप संस्थापक को पहले चरण में 15 लाख रुपए और दूसरे चरण में 10 लाख रुपए दिए जाएंगे।
जो अभी सीड फंडिंग हम 10 लाख रुपए करते हैं, ये बहुत ही कम है। मैं एक प्रस्ताव दे रहा हूं गवर्नमेंट को कि ये सीड फंड मिनिमम 25 लाख किया जाए, क्योंकि कोई भी यूथ अगर आते हैं स्टार्टअप को लेकर के और उस यूथ को अगर मोटिवेट गवर्नमेंट नहीं करे तो हमें लगता है कि हम बहुत बड़े ड्रीम को कभी भी हासिल नहीं कर सकते। इसलिए हम एक प्रस्ताव भेज रहे हैं, हमारी बात सरकार से हुई है, गवर्नमेंट के डिफरेंट स्टेज से हुई है कि हम जो सीड फंड देंगे 15 लाख फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड 10 लाख सेकेंड इंस्टॉलमेंट, इसका हम प्रयास कर रहे हैं।
सर्वोच्च न्यायालय ने फार्मासिस्ट पद के लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी की न्यूनतम योग्यता की अनिवार्यता वाले बिहार सरकार के नियम को सही ठहराया है। न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के फैसले को सही ठहराते हुए इस संबंध में दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। गौरतलब है कि बिहार में फार्मासिस्ट के 2473 पदों के लिए प्रकाशित विज्ञापन में डी फार्मा को अनिवार्य न्यूनतम योग्यता तय किया गया था। इसे अभ्यर्थियों ने पटना उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। पटना उच्च न्यायालय ने विज्ञापन में प्रकाशित योग्यता को सही ठहराया था, जिसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AINNews_Patna पर जा सकते हैं। राज्य में पहली बार पुलिस की स्वतंत्र ड्रोन यूनिट गठित की जाएगी। ADG आधुनिकीकरण सुधांशु कुमार ने बताया कि ड्रोन कैमरा से ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की पहचान कर सीधे चालान की कार्रवाई की जाएगी। वहीं ड्रोन की मदद से संवेदनशील इलाकों की लाइव मॉनिटरिंग से पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ेगी। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने बताया कि 40 ड्रोन पुलिस जिलों में तैनात होंगे, वहीं 10 ड्रोन स्पेशल टास्क फोर्स को मिलेंगे।
विभिन्न प्रकार के ड्रोन के क्रय हेतु करीब 25 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रस्ताव को असम के तहत इस बार स्वीकृति दी गई है। इसका ये लाभ होगा कि हर जिले में कम से कम एक ड्रोन जो स्मॉल साइज का है और 45 मिनट उसका अवधि है जिसके लिए वो एयरबोर्न हो सकता है, वो हमें उपलब्ध होगा। और तो इस प्रकार 40 ड्रोन हुए टोटल और 10 जो है ड्रोन वो स्पेशल हाई क्वालिटी के वो STF को उपलब्ध कराए जाएंगे, जो खास करके देहरा क्षेत्र में जो अपराध है उस पर अंकुश लगाने में काम आएगा।
जहानाबाद की एक छात्रा की पटना में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की जांच के लिए पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने SIT का गठन किया है। पटना सिटी SP पूर्वी परिचय कुमार के नेतृत्व में गठित SIT पूरे मामले की जांच करेगी। वहीं IG जितेंद्र राणा अनुसंधान की निगरानी करेंगे। मुजफ्फरपुर की विशेष निगरानी अदालत ने लौरिया चीनी मिल में 997 बोरा चीनी घोटाला के मामले में तत्कालीन 6 पदाधिकारियों को सजा सुनाई है। बिहार राज्य शुगर कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना के तत्कालीन शासन प्रमुख नंद कुमार सिंह और तत्कालीन प्रबंध निदेशक के विशेष सहायक उमेश प्रसाद सिंह को 2-2 वर्ष कारावास और 10,000 रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। यह मामला 1990 का है। नवगठित उच्च शिक्षा और नागर विमानन विभाग में 260 पदों पर नियुक्ति होगी। उच्च शिक्षा विभाग में 161 जबकि नागर विमानन विभाग में 99 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। दोनों विभागों ने पद सृजन का प्रस्ताव तैयार कर लिया है और इस पर वित्त विभाग ने भी अपनी सहमति दे दी है। मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश में अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। दिन में धूप निकलेगी लेकिन सुबह और शाम के समय पछुआ हवा के चलते कनकनी का प्रभाव बना रहेगा। पटना के दानापुर थाना क्षेत्र के पूर्वी कोला रोड स्थित एक होटल में पुलिस ने छापेमारी कर साइबर ठग गिरोह के 10 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पटना की पॉक्सो अदालत ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी सोहन कुमार को 20 साल कारावास और 11,000 रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। पूर्णिया जिले के नगर थाना क्षेत्र के झील टोला में शराब कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी करने पहुंची उत्पाद विभाग की टीम पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। एक उत्पाद सिपाही पर चाकू से हमला किया गया जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए। इस मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। अररिया जिले के आरएस थाना क्षेत्र के अंसारी टोला के पास पुलिस ने एक ऑटो रिक्शा से 200 लीटर शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। वैशाली जिले के पातेपुर प्रखंड कार्यालय परिसर में नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेले का आयोजन किया गया। मेले में 187 आवेदकों का चयन विभिन्न कंपनियों ने किया। औरंगाबाद जिले के नवीनगर प्रखंड के बड़े में सूर्य राघव महोत्सव का आयोजन किया गया। भुवनेश्वर में आयोजित सब जूनियर राष्ट्रीय रग्बी प्रतियोगिता में बिहार की टीम ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। बिहार ने प्री क्वार्टर फाइनल में झारखंड को पराजित किया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा से जुड़ी खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है, सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस रोकने को नीति बनेगी। दैनिक जागरण ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है, आरक्षित वर्ग के मेधावी अभ्यर्थियों को भी सामान्य सीट का हक। प्रभात खबर की सुर्खी है, नितिन नवीन तय, 20 को मिलेगा भाजपा को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। दैनिक भास्कर ने लिखा है, बिहार में अब ड्रोन पुलिसिंग, हर जिले में एक यूनिट होगी। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, विवाह ई निबंधन के लिए हार्ड कॉपी अनिवार्य नहीं। आज अखबार लिखता है, दुनिया के सबसे ऊंचे शिवलिंग की स्थापना आज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के मालदा से हावड़ा और कामाख्या के बीच देश की पहली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने के लिए जल्द लाई जाएगी नई नीति। उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल की घोषणा, स्टार्टअप के लिए अब उद्यमियों को सीड फंड के रूप में 10 लाख रूपये की जगह 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। और राज्य में एग्री स्टैक महाभियान के तहत किसानों के पंजीकरण का दूसरा चरण आज से, अब तक 20 लाख से अधिक किसानों का हो चुका है निबंधन। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।